ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के इस 28 जून सन 2011 के मंगलवार के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और हमारे राठौड़ जी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं कथा सुनने के लिए, आपका भी स्वागत है। तो बहुत अच्छा सुंदर अभी सीजन चल रहा है जगन्नाथपुरी उत्सव का, कुछ ही दिन में रथ यात्रा का उत्सव होने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु जो हम लोग रोज सुबह प्रार्थना करते हैं शिक्षाष्टक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम, रोज गाते हैं, लेकिन रोज उस पर सोचना भी चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए। वो कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, यानी कि हमारा हृदय जो है एक आईने की तरह है, और वो आईना अगर स्वच्छ रहेगा तो अपने आप को हम कौन है, वास्तव रूप में कौन है, उसको हम ठीक से देख पाएंगे कि हम कौन है। अगर उस पर धूल जमी होगी तो हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल धूल ही दिखाई पड़ेगी। तो महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब उसको साफ करना है, हमारे हृदय का जो आईना है उस पर जो गंदगी, कर्मों की, पापों की, गए जन्मों के सब हिसाब किताब की जो गंदगी, धूल जमी हुई है, उसको साफ करने का बहुत आवश्यकता है। और वो साफ करने का तरीका कोई सर्फ लक्स साबुन का नहीं है, साफ करने का तरीका जो है भगवान के नाम का कीर्तन का है। भगवान के नाम का जप करते ही धीरे 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 हमारे हृदय के आईने के ऊपर जो धूल जमी हुई है जन्म जन्मांतर की, अनेक स्तरों की, एक एक करके नष्ट होने लगती है। और जैसे ही धीरे धीरे ये धूल नष्ट होने लगती है वैसे हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो प्रकट होने लगता है। और न केवल हमारा रूप प्रकट होता है लेकिन वास्तव में भगवान कौन है ये भी हमारे सामने प्रकट होने लगता है। इट इज रिवील्ड टू अस कि हम कौन हैं और भगवान कौन है और हमारा उनका रिश्ता क्या है। ये जानने की प्रक्रिया भगवान का नाम लेना है। भगवान के नाम लेने का जो प्रक्रिया है, भगवान के नाम का जप का जो विधि है, उसका अर्थ ही यह है, चाहे हम किसी भी धर्म क्यों हो, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है, हमारा हृदय साफ हो जाता है। हृदय साफ होने से हमारी अपने आप को पहचान होती है और भगवान को भी हम पहचानते हैं, और हमारा और भगवान का क्या रिश्ता है ये भी हम पहचानते हैं। ये समझ जाते हैं कि हमारा उनका रिश्ता प्रेम का है और कोई रिश्ता नहीं है। आप कन्नड़ में बोलो, मलयालम में बोलो, तेलुगु में बोलो, गुजराती में बोलो, काठियावाड़ी में बोलो, मराठी में बोलो, प्रेम की भाषा प्रेम की होती है, प्रेम की भाषा बदलती नहीं है। लैंग्वेज ऑफ लव डजंट चेंज, वो सीधे हृदय से हृदय तक पहुंचती है। हमारे गुरु महाराज अमेरिकन हैं, वो हिंदी नहीं बोलते हैं, उनके कई ब्रजवासी मित्र हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो रात रात तक बातें करते बैठते थे, ना इनको हिंदी समझ में आ रही है ना इनको इंग्लिश समझ में आ रही है, लेकिन रात रात ओवर नाइट वो बात करते बैठते थे। और अभी आज के तारीख में हम लोग उनका अनुवाद करते हैं, मैं जाके उनका अनुवाद करता हूं, लेकिन वो मुझे बोलते हैं कि उन जमाने में बिना अनुवाद किए जो आनंद था वो आज अनुवाद करने पर नहीं मिल रहा है। हैप्पीनेस दैट वी वर डिराइविंग विदाउट ट्रांसलेटर was too much that time। तो हृदय की बात ऐसी होती है, हृदय की बात जो है प्रेम की बात होती है। तो इस हृदय की बात को अगर समझना है तो हृदय को स्वच्छ करना पड़ेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा होने के पहले मंदिर साफ करने का निर्णय लिया। बहुत सिग्निफिकेंट है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों महाप्रभु चैतन्य ने जहां पर जगन्नाथ भगवान रथ में बैठकर गुंडीचा मंदिर में पहुंचने वाले हैं, वहां पर पहुंचने के पहले पूरा मंदिर साफ करने का निर्णय लिया उन्होंने? क्योंकि भगवान आने, एक तो कारण यह है कि भगवान आने वाले हैं, भगवान के लिए स्वच्छ जगह होनी चाहिए। तो उन्होंने ये साफ सफाई का आंदोलन इसलिए किया क्योंकि वो मंदिर जो था, जो साफ किया गया, उसको हृदय माना गया, हृदय की तरह है। क्योंकि अगर मंदिर स्वच्छ नहीं है तो वहां भगवान नहीं आ सकते। जहां पर साफ सफाई नहीं है, जहां पर पवित्रता नहीं है, शुद्धि नहीं है, शुचि नहीं है, वहां पर भगवान नहीं आ सकते, प्रकट नहीं हो सकते। स्वच्छता होना बहुत जरूरी है, हृदय की शुद्धि होना बहुत जरूरी है, तब उसमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो अगर भगवान को वहां पर विराजमान होना है, भगवान को वहां पर विशाल बसाना है, तो स्वच्छ रखना पड़ेगा। तो हृदय का कैसा है? जहां विचार गलत है वहां हृदय गलत है, जहां विचार शुद्ध है वहां हृदय शुद्ध है। शुद्ध विचार रहेंगे, शुद्ध भावना रहेगी, तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान उसमें प्रकट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने गुंडीचा मार्जन, गुंडीचा मंदिर का साफ सफाई करने का निर्णय लिया, और इतना सुंदर तरीके से साफ किया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सब भक्तों को चंदन लगाया, सबके गले में माला पहनाई, उनका स्वागत किया, उनको दंडवत प्रणाम किया, उनका सत्कार किया, फिर एक एक के हाथ में झाड़ू बाल्टी पोछा पकड़ा लिया। सबको बताया गया कि इस मंदिर को साफ करते समय कोई बात नहीं करेगा, अगर आपको समझो पानी चाहिए, अगर आपको कपड़ा चाहिए, अगर आपका झाड़ू बदली करना है, अगर आपको साबुन चाहिए, कुछ और कुछ वस्तु चाहिए, तो केवल एक ही बोलना है। क्या बोलना है? हरी हरी बोलो, हरी हरी, हरी हरी, हाँ बस इतना ही बोलना है। और सबको समझता था कि उनको क्या चाहिए, किसको साबुन चाहिए, किसको झाड़ू चाहिए, हरी 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 हरी, सब साफ कर रहे बोले हरी 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 हरी। और जहां जहां उन्होंने कचरा जमा किया, एक जगह महाप्रभु चैतन्य का कचरा जमा हो गया था, बाकी सब जगह भक्तों का कचरा था, तो सब भक्तों के जितना कचरा इकट्ठा किया उससे कई गुना अधिक कचरा महाप्रभु चैतन्य ने स्वयं इकट्ठा किया। इससे हम क्या सीखते हैं कि महाप्रभु चैतन्य भगवान होने पर भी स्वयं अपने हाथ से झाड़ू लगा देते। एग्जाम्पल मतलब क्या, बड़ा आदमी होने से क्या होता है, बड़ा आदमी को भी उदाहरण होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए। तो स्वयं उन्होंने झाड़ू लगाया तो उनके प्रेरणा से बाकी सब लोगों ने बड़े उत्साह से झाड़ू लगाया और सबसे अधिक कचरा इकट्ठा किया। फिर वो करने के बाद में उसने उठाकर वो बाहर फेंक दिया। फिर दोबारा जब इकट्ठा किया तो एकदम छोटे छोटे कोने में जाकर उन्होंने झाड़ू लगाया और फिर दोबारा कचरा इकट्ठा किया और उसमें भी महाप्रभु चैतन्य का कचरा इकट्ठा किया हुआ सबसे अधिक था। तो उन्होंने अपने धोती से गीदा करके उसको साफ किया, सब भक्तों ने पानी डाल के साफ किया, मतलब जो छुपा हुआ कचरा भी है उसको भी निकाल दिया। फिर पानी डाल के साफ करने का फिर कपड़े से साफ किया, इस तरह से मंदिर को साफ एकदम चकाचक बना दिया। अभी आप जानते नहीं, महाप्रभु चैतन्य भगवान स्वयं कृष्ण है, वो हाँ उनका वस्त्र जो है वो दिव्य वस्त्र है, उस दिव्य वस्त्र से वो मंदिर को साफ करते हैं। ये बताने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसे किया था, अपने जीवन के आखिरी दिन यानी कि कल के दिन वो क्रॉस पे उनको लटकाने वाले थे, उसके शाम को उन्होंने अपने सारे भक्तों को बुलाया, 12 लोगों को बुलाया और 12 लोगों को बुलाकर उनके पैर धोए, उन्होंने अपने कपड़े से उस पैर को पोंछा और बताया कि जिस तरह से मैंने मेरे भक्तों के, मेरे शिष्यों के पैर धोए हैं, वैसे ही आप में से जो सबसे कम होंगे, सबसे नीचे होंगे, उनको आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। जो मैंने आज ये सेवा किया है वो सेवा आप में से, आपको लगता होगा कि ये सबसे नए हैं, सबसे जूनियर है, उनको वो सेवा आपको देना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया है वैसे आपको आगे करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, उन्होंने स्वयं अपने ही शिष्यों के चरण धोके दिखाए सबके सामने और बताया कि आपको ऐसे करना होगा, क्योंकि मैं भी ऐसा कर रहा हूं, आपको भी आगे ऐसे ही करना होगा। इसको कहते हैं उदाहरण। वो ऐसे बैठकर कथा भी कर सकते थे ना, प्रवचन बोल सकते थे कि आप सबको आपके भक्तों के चरण धोने चाहिए, ठीक है, कथा में बोल दे अच्छी बात है, लेकिन कथा में बोला और बाद में खुद किया, खुद करके दिखाया। ये होता है ना, जब खुद करते ना कोई काम तो देखने वालों को प्रेरणा मिलती है। मुंह से बोलना एक बात है, अच्छी बात है, लेकिन जब शरीर से आदमी करता है तो उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। महाप्रभु चैतन्य ऐसा नहीं कि वो अपने मंदिर में बैठे रहे भजन करते करते, बाकी लोगों को बोला आप जाओ सब लोग साफ करो, ऐसे करना है वैसे करना है, हरी हरी बोलना है, ये करना है वो करना है, और करो अभी आप मुझे कल रिपोर्ट दे दो शाम को, ऐसा नहीं बताया, साथ में स्वयं गए। उसी तरह से भक्ति विधान में भी सब प्लानिंग करते हैं, सब जगह कथा करते हैं, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, लेकिन सब मैनेजर डायरेक्टर सब लोग आके स्वयं साफ करते हैं ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। ये उदाहरण का होना बहुत जरूरी है। घर में भी हमको उदाहरण बनना है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई चाचा है, कोई दादा है, नानी है, बड़े लोग हैं ना, उपदेश करते रहते हैं हमको, बोलते रहते ऐसा करना चाहिए वैसे करना चाहिए, लेकिन जब वो स्वयं करते हैं उस बात को तो फिर उसका फर्क पड़ता है। खुद करने से बहुत फर्क पड़ता है। एक माता अपने बालक को लेकर साधु के पास गई, बोले महाराज जी मेरा बच्चा जो है बहुत मिठाई खाता है, आप जरा उसको समझाओ तो मत खाए मिठाई। तो महाराज जी बोले 7 दिन के बाद आओ। तो ठीक है, 7 दिन के बाद में आए बच्चे को लेके। तो महाराज जी बोलते हैं बेटा मिठाई नहीं खाना चाहिए। तो बेटे ने मिठाई खाना बंद कर दिया। तो माता बोली 7 दिन के पहले क्यों नहीं बोला, यही बोलना था आपको ना, 7 दिन के पहले क्यों नहीं बोला। उन्होंने कहा 7 दिन के पहले मैं भी मिठाई खाता था, तो मैंने खुद प्रैक्टिस किया छोड़ देने का, 7 दिन मैंने खुद नहीं खाया, और उसके बाद जब बोला तो मेरे बात में दम आया, वजन आया, और वजन वाला बात जब बच्चे ने सुना तुरंत उसने भी छोड़ दिया। एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंस ये है, खुद करेंगे। जैसे हमारे इंडक्शन में हम लोग हमेशा एग्जाम्पल लेते कि डायरेक्टर जा रहा है अपने हॉस्पिटल का काम पे, सुबह 10 बजे आ रहा है तो उसको कचरा दिखाई पड़ता है, तो वो क्या करता है फोन करता है मैनेजर हाउसकीपिंग लॉबी में कचरा गिरा हुआ है क्या हो रहा है। हाँ सर ये साफ निकालता हूँ सर। तो मैनेजर सुपरवाइजर को फोन करता है, सुपरवाइजर लॉबी में कचरा गिरा है क्या हो रहा है, वहां पर कौन वार्ड बॉय है। हाँ सुपरवाइजर होता है इस सर शराबी देखता हूँ। सुपरवाइजर फिर फोन करता है वार्ड बॉय को, अरे कौन है तिकड़े, फिर कचरा पड़ला है। फिर वो भाग भाग के वार्ड बॉय आएगा मामा हरी बोल और तुरंत कचरा निकाल के डब्बे में डाल देगा। तो हम क्या बोलते हैं ये जो हो रहा है, ये हमने जो आपको अभी बताया कथा कहानी बताई डायरेक्टर की, वो गलत एग्जाम्पल है। उसको क्या करना चाहिए, तुरंत झुककर वो कचरा उठा के डब्बे में डालना चाहिए। तो जब लोग देखेंगे कि डायरेक्टर भी झुककर कचरा उठाकर अपने हाथ से डब्बे में डाल रहे हैं तो हमको भी डालना चाहिए। तो 4 फोन करेंगे ना, 1 फोन 2 फोन 3 फोन 4 फोन करेंगे कचरा निकलेगा जरूर, बीच में 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, 4 फोन कॉल भी वेस्ट हो जाएंगे। उदाहरण बहुत जरूरी है क्योंकि भगवान की सेवा में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है और कोई काम भी ऊंचा नीचा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि झाड़ू बनाने का काम बहुत गलत है और मैनेजमेंट का काम बहुत बड़ा है और डॉक्टरी करना और बड़ा ब्रेन का सर्जरी करना बहुत बड़ा काम और ये काम बहुत घटिया काम है, ऐसा नहीं होता है। भगवान किसी भी काम को छोटा या बड़ा इस रूप में नहीं देखते। भगवान कोई भी काम कौन सी भावना से कर रहा है उसको देखते। भावना क्या है उस भक्ति की, हनुमान जी पहाड़ में उठा रहे और वो गिलहरी जो है वो कुछ मट्टी के दाने फेंक रही है राम जी के सेतु में। तो भगवान ये नहीं बोल रहे अरे तू तो 2-4-5 ग्रैन फेंक रही है, हनुमान को देख 1000 किलो का पहाड़ उठा के डाल रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, जल्दी बल्दी ब्रिज बनेगा मेरा, ऐसे भगवान नहीं बोलते। भगवान बोलते गलत है ये बात, हनुमान जी को टोक रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो 100% कर रहे हो और जो गिलहरी कर रही है वो भी 100% कर रही है, तुम कैसे बड़े हो गए। उसके पास जो कैपेसिटी है वो 100% यूज कर रही है और तुम्हारे पास जो कैपेसिटी है तुम 100% यूज कर रहे हो। तुम्हारे कैपेसिटी से 1000 किलो का पहाड़ आ रहा है, उसकी कैपेसिटी से 2-4 ग्राम धूल आ रही है, लेकिन मेरे लिए दोनों समान है क्योंकि तो दोनों मेरे लिए 100% कर रहे हैं। इसी तरह से कोई अगर झाड़ू लगा रहा है कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई सुई लगा रहा है, कोई बिल बना रहा है पेशेंट का, कोई पेपर बना रहा है उसका ओपीडी का, ये सब काम कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। जिस भाव से कर रहा है वो काम, उससे वो ऊंचा बन जाता है। अगर दिल से कर रहा है, लगन से कर रहा है, तो भगवान का ध्यान उसके ऊपर आकर्षित होता है। वही साफ सफाई की बात चल रही है हमारे हॉस्पिटल में, अभी 2 तारीख को हमको महासफाई अभियान है ना हमारा, गुंडीचा मार्जन करने वाले हम लोग। तो आपको बताता हूं मैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है भावना, कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बरसाने की कहानी है, बरसाने के मंदिर की सीढ़ियों पर एक भंगी था, वो बुहारी कर रहा था। बुहारी का मतलब झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना। तो वो इतनी प्रेम से झाड़ू लगा रहा था, क्या उसके मन में भावना थी, अरे इन सीढ़ियों को मैं साफ करूंगा तो इन सीढ़ियों से राधा और कृष्ण चढ़ेंगे और पहाड़ पर जाएंगे, तो कहीं पर वो गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं कंकड़ नहीं होना चाहिए, कहीं कांटा नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ होना नहीं चाहिए, सब जगह साफ होना चाहिए, क्योंकि राधा और कृष्ण शायद यहां से आगे चलेंगे। उस भावना से वो झाड़ू लगा रहा है, और केवल बुहारी नहीं कर रहा है, वो गीत गा रहा है, वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन का गुणगान कर रहा है, राधा कृष्ण का नाम ले रहा है। तो जैसे ही वो बुहारी कर रहा था, तो ऊपर एक झाड़ था उसके पेड़ ऐसे, जिसकी डालियां ऐसे फैली हुई थी, उसके भाव को देखकर, उसकी बुहारी का जो भाव है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, प्रेम के आंसू, और वो झाड़ू लगा रहा है, भगवान के आनंद के लिए कर रहा है। तो उस डाली पर राधा और कृष्ण प्रकट हो जाते, डाली पर प्रकट हो जाते। तो डाली है, बैठ के ऐसे ऐसे हिला रहे डाली पर बैठकर, और राधा रानी कृष्ण को बोल रही है, देखो कितना बढ़िया भक्त है, कितनी प्रेम से बुहारी कर रहा है, आंखों में आंसू लेकर मुंह से हमारा गुणगान, हमारे धाम का गुणगान कर रहा है, देखो कितना बड़ा भक्त है, इसको कुछ उपहार देना चाहिए। क्या देंगे उनको? तो राधा रानी कहते हैं कृष्ण भगवान को, आपने जो अंगरखा पहन के रखा है ना, वो बहुत बढ़िया है, उसको दे दो प्रसाद। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे बाबा ने मुझे पहनाया है सुबह, तो बाबा मुझे डांटेंगे, शाम को पूछेंगे अंगरखा कहाँ गया, तो मैं क्या बताऊं, तो मैं नहीं दे सकता हूं। तो राधा रानी कहते नहीं, आपको देना चाहिए, उनको इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कृपा होनी चाहिए आपकी तरफ से। तो फिर भी कृष्ण भगवान मना कर देते, तो राधा रानी रूठ जाती है, कहते आप नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आप मत दो, मैं मेरा दुपट्टा उन्हें निकाल के दूंगा, मैं सोचूंगी नहीं ऐसे कि मेरे बाबा ने और मेरी मैया ने मुझे ओढ़ा था। वो निकालती है दुपट्टा, उसके शरीर पर डाल देती है, ऊपर से सीधे शरीर पर पड़ता है उसका, राधा रानी का पहना हुआ दुपट्टा। और जैसे ही वो पड़ता है उसके शरीर पे, तो उसके शरीर में कंपन होता है, प्रेम से आवेग से वो बेहोश हो जाता है, रोता है, बहुत प्रेम से रोता है, भगवान के प्रेम से रोता है, क्योंकि राधा रानी का जो अंगरखा है वो कोई साधारण वस्त्र नहीं, जैसे जीसस क्राइस्ट का वस्त्र है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का वस्त्र है, जैसे राधा रानी का दुपट्टा है, ऐसी कृपा होती है। भावना से काम करना चाहिए। और भगवान को सबसे बड़ी चिड़ कौन सी किस बात की है? दिखावे की, ढोंग की। आप कुछ भी मत करो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ढोंग का काम मत करो। अगर आप कुछ नहीं करो तो चलेगा, चलो आपको इंटरेस्ट नहीं उसके अंदर, लेकिन आप कर रहे हो दिल से करो, क्योंकि दिल से करने से जो दिल में बैठे हैं वो उसमें खिंच जाते हैं, उनका ध्यान वहां पर खिंच जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं भगवान का नाम लेना है तो भी दिल से लो, हृदय से पुकारो उनको, ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, यहां दिख रहे वहां दिख रहे, कभी रोटी मिलेगी, पेड़ा मिलेगा, लड्डू मिलेगा, रसमलाई मिलेगी, कुछ प्रवचन के बाद में क्या प्रसाद है, ऐसे करके जब नहीं होता है, हृदय से पुकारना चाहिए उनको। जब सेवा हो रही है, सेवा हृदय से होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग महासफाई करके कितना स्क्वायर मीटर जगह, कितना स्क्वायर फुट जगह, कितना स्क्वायर इंच जगह साफ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कौन सी भावना से कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है वो वॉल्यूम के मुखी नहीं है। अरे 80,000 स्क्वायर फीट साफ किया गया, तो 80,000 रुपए मिलने चाहिए बख्शीस में, ये उनका गणित नहीं होता है। जो भी साफ कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं, हृदय से कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो गुंडीचा मंदिर जो उन्होंने साफ किया, तो उन्होंने बताया कि हृदय की तरह है, इसको पहले चमकाओ, जब वो चमकेगा स्वच्छता से तब जाकर उसमें भगवान प्रकट होंगे। तब जगन्नाथ जी आएंगे वहां पर रथ में बैठकर बड़े प्रेम से विराजेंगे। तो मीरा रोड में क्या होता है, मीरा रोड में जिस रास्ते से भगवान जाने वाले हैं उस सारे रास्ते को साफ कर देते हैं, पूरा राउंड वापसी तक। ऐसा कोई भी मंदिर से किधर से भी ऐसी योजना नहीं है शहर साफ करने की। मीरा रोड के अंदर कोई व्यवस्था हर साल में एक बार है, सब भक्त लोग जो है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई मैनेजर है, कोई डॉक्टर है, सब मिलकर झाड़ू लेकर रास्ते में साफ करते हैं। जनता उनको देखती है, अरे सब लोग झाड़ू लगा रहे हैं, वो भी कैसे लगा रहे हैं, कीर्तन करते करते लगा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है भगवान का नाम का, बारिश हो रही है, कीर्तन भी हो रहा है भगवान के नाम का, और झाड़ू लगाई जा रही है, गटर में हाथ डाल डाल कर कचरा साफ किया जा रहा है, और पीछे से लोग उनको पानी पिला रहे रास्ते पे, अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि रास्ता इसलिए साफ किया जा रहा है क्योंकि कल भगवान आने वाले हैं, अपना मंदिर छोड़ के रास्ते पे आने वाले हैं, इसलिए उनकी नजरों में कहीं कचरा नहीं गिरना चाहिए, इसलिए हम लोग रास्ता साफ कर रहे हैं। भावना क्या है, लोगों को इंप्रेस करने की भावना नहीं है, भावना यह है कि जगत के नाथ जो है किंग ऑफ द वर्ल्ड वो रस्ते पे आने वाले हैं, वो जहां जहां भी देखेंगे वहां कचरा नहीं दिखना चाहिए, उस भावना से साफ करें। अरे महाराज जी आ रहे हैं, अभी देखो वो दिन कुछ साल पहले बिल क्लिंटन आया था, अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो जब आया था तो ऐसे बताया गया था कि अंधेरी से लेकर नरिमन पॉइंट तक सब रस्ते झाड़ पोछ के चकाचक पेंटिंग करके रखा था उसको, फुटपाथ पर पेंटिंग, डिवाइडर पर पेंटिंग, सब जगह पेंट करके नए झाड़ लगाए गए थे, क्या क्या डेकोरेशन किया गया था, कहां से अंधेरी एयरपोर्ट से लेकर नरिमन पॉइंट तक, ओबेरॉय होटल तक। अरे वो तो एक देश का मामूली प्रेसिडेंट है, वो आज नहीं तो कल मरने वाला है। वो तो ऐसा व्यक्ति था कि उसका दो तीन लव अफेयर भी थे उसके शादी के बाद में, मतलब कोई बड़ा ऐसा संत नहीं था वो जिसके रास्ता साफ किया जाए, लेकिन उसके लिए भी साफ किया जा रहा है। पेपर में उसका कितने स्कैंडल आते थे कि उसकी पत्नी हिलरी क्लिंटन है लेकिन उसका किसी और फिल्म स्टार के साथ अफेयर है, पहले भी था बाद में भी है, नया भी हो रहा है, कितने स्टोरी पेपर में आ रही है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसके लिए अंधेरी से नरिमन पॉइंट तक रोड साफ सफाई की जा रही है, हजारों कर्मचारी लेबर लगाए जा रहे हैं, चकाचक किया जा रहा है, कितना खर्चा किया जा रहा है, सिक्योरिटी भी है, कोई गंदा करने को अलाउड नहीं है दो दिन के लिए जब तक वो आएगा तब तक। और ये तो जगत के नाथ आ रहे रास्ते पर, और वो व्यभिचारी नहीं है इनकी जैसे, गलत एग्जाम्पल भी नहीं है, स्वयं भगवान है वो, दयालु करुणा करुणा के सागर है, अपनी कृपा दृष्टि अपनी कृपा सबको देने के लिए आने वाले हैं। तो कितना साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन तब वो गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी साफ करने को नहीं आता है, अपना फोर्स देता नहीं है, भक्त लोग अपने हाथ में झाड़ू देकर बरसात में साफ करते हैं। भावना इंपॉर्टेंट है। बिल क्लिंटन के लिए रास्ता साफ करके किसी को कोई लाभ नहीं होगा, किसी की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, किसी भक्ति नहीं बढ़ने वाली है, उसका मान बढ़ेगा लेकिन आपकी किसी की भक्ति नहीं बढ़ने वाली है। आपका टैक्स का पैसा लेकर रोड साफ किया जाएगा, आपको एक रुपए का लाभ नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन जगन्नाथ भगवान के झाड़ू लगाएंगे आपका हृदय साफ होगा, भगवान वहां पर विराजेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। और वो भावना की भूखे हैं, जहां भावना है वहां वो प्रकट हो जाती है। इज हंगरी ऑफ लव, गॉड इज हंगरी ऑफ लव। जब प्रेम से उनकी सेवा होती है, जब प्रेम से उनको पुकारा जाता है, वहां प्रकट हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये गुंडीचा मार्जन का उत्सव किया, भक्तों को समझाने के लिए हृदय को साफ करना कितना इंपॉर्टेंट है, और मंदिर भगवान का और हमारा हृदय, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जहां भगवान रहते हैं वो मंदिर है, और हृदय में है तो हृदय में मंदिर हो गया, वहां परमात्मा विराज करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम हरी हरी कहकर साफ करेंगे तो हमारे रास्ते के साथ, हमारी जमीन के साथ में हृदय भी साफ होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं पुकारो भगवान को, पुकारते पुकारते करो, हरि हरि बोलते बोलते, हरे कृष्णा बोलते बोलते, राधे राधे बोलते बोलते साफ करो, उससे क्या होगा, साथ साथ हृदय भी साफ होगा। नम्रता पूर्वक आदमी झाड़ू देगा और छुप जाएगा और साफ करेगा, बहुत उन्नति करेगा। मैं तो अस्पताल के जैसे जगह पर ऐसा महामार्जन करने की आवश्यकता है क्या? आपने कभी सुना है कि हिंदुजा में हो रहा है? सुना है कभी आपने? लीलावती में हो रहा है, हिंदुजा में भी हो रहा है, सुना है क्या? पहली बार हो रहा है दुनिया में, पहली बार भक्ति वेदांत अस्पताल हॉस्पिटल के अंदर जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रही है, गुंडीचा मार्जन हो रहा है, हरिनाम कीर्तन हो रहा है, प्रसाद का कार्यक्रम हो रहा है, प्रवचन हो रहा है। हाँ, यह अनोखी बात। साधारण बात नहीं है। ऑन ड्यूटी सब लोगों को बैठकर सुनने को मिल रहा है मौका, कथा सुनने से भी हृदय की शुद्धि होती है, इसका हमको लाभ लेना चाहिए। भगवान जो है वो हम पर कृपा करने के लिए बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, तो हम पर कृपा बरसे। जो भक्त लोग मंदिर में नहीं आ पाते हैं उनको दर्शन देने के लिए मंदिर छोड़कर चले जाते हो, कितनी कृपा है देखो। जगन्नाथपुरी के अंदर जो विदेशी लोग हैं, जो किसी अन्य जाति के लोग हैं, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं है, उनको दर्शन देने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए साल में एक बार मंदिर के बाहर निकलते हैं और दो बार यात्रा करते हैं, एक बार इस तरफ की, एक बार वापसी की यात्रा भी करते हैं। दोनों तरफ सब लोग जो साल भर नहीं देख सकते हैं वो सब लोग आते हैं वहां पर, काले गोरे पीले सब लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले विदेशी लोग सब जमा हो जाते हैं वहां पर, फोटो निकालते हैं, कुछ भी वीडियो निकालते हैं, एनीथिंग दे कैन डू। तो ये क्या है, भगवान की कृपा है। साल भर उनको मंदिर में एंट्री नहीं है, लेकिन साल में ये दिन, इन दिनों में पूरी एंट्री है। दर्शन करो, क्यों दर्शन नहीं करो, गले मिलो उनसे, गले लगा लो उनको, उनका प्रसाद पालो, इतना भाग्य है, इसका लाभ हमको लेना चाहिए। इसलिए हम आपको क्या विनती करते हैं, आप सब लोगों को बताओ, जो लोग भी यहां पर है या नहीं है सबको बता दो कि आप आओ और उत्सव में भाग लो। केवल इसमें भाग लेने से ही आप पर कृपा होगी भगवान की। और क्या मतलब भगवान की कृपा का, भगवान की कृपा का मतलब यह है भगवान से प्रेम होगा आपका। भगवान से प्रेम होगा मतलब क्या होगा, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, सारे कष्ट मिट जाएंगे, सारी पीड़ा मिट जाएगी और जीवन आनंद से भर जाएगा। सब लोग बड़े आने वाले, सब लोग मरने वाले हैं, आनंद किसके पास है, तो भगवान से जुड़ा हुआ है उसी को आनंद प्राप्त है। ये हमको समझना जरूरी है। तो हृदय से कोई कार्य करेगा तो भगवान उसकी ओर खींचे जाते हैं। इसलिए आप 4 फुट जगह साफ करो कोई बात नहीं, लेकिन दिल से करो, भगवान का नाम लेते करो, तो आपको उसका परम लाभ होगा, भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। आप देखो जो लोग उत्साह से भाग लेंगे उसको इतना आनंद होता है उस दिन, इतना वो खुशी से भर जाते हैं, सब चिंता पीड़ा दुख दूर होते हुए नजर आते हैं उस दिन। यही रहस्य है जीवन का, जो भी करेंगे हृदय से करना चाहिए, उसी को प्रामाणिक कहते हैं। प्रामाणिक का मतलब क्या है, जो करेगा वो हृदय से करेगा। आप उसको बताया गया कि वो बाथरूम साफ करना है तो भी वो हृदय से करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारा फोटो निकालते नहीं, वो लोग साफ करते करते, सब लोग वहां पर वड़ा खाने को आते हैं तो सबका फोटो दिखता है इधर पर्दे पर, हमारा फोटो निकालते हुए आते नहीं, हम लोग तो बिल्डिंग के बाहर सब सफाई करते हैं। अरे हम लोग फोटो में आने के लिए साफ कर रहे हैं, जिनको हमारा फोटो निकालना है वो निकाल रहे हैं ऊपर बैठ के, वो सबको देख रहे हैं। जहां कैमरा नहीं पहुंचता है वहां भगवान की नजर पहुंची हुई है, क्योंकि सूरज और चांद भगवान की आंखें हैं, भगवान से कोई चीज छिप नहीं रही है। अगर आप साफ सफाई कर रहे हो भगवान आपको देख रहे हैं, इस दुनिया का कैमरा आपको नहीं दिख रहा है और दुनिया में कैमरा का फोटो नहीं निकल रहा है और वो स्क्रीन पर नहीं दिखा दे रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, हु केयर्स। हम लोग साफ किसके लिए कर रहे हैं, फोटो में आने के लिए कर रहे हैं, सब लोग की तरफ से वाह वाह होनी चाहिए इसलिए कर रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, क्या उद्देश्य कर रहे हैं, ये यहां पर मालूम पड़ जाएगा आपके दिल में क्या है। जब ये कंप्लेंट आती है कि हमारा फोटो निकाल रहे नहीं, हम लोग बिल्डिंग के बाहर काम करते हैं, फोटोग्राफर अंदर ही घूमते रहते हैं, मतलब मैं विश्वरूप दास मेरी बात कर रहा हूं, कैमरा मेरे पास रहता है ना, इसलिए तो हमने कहा इस बार हम बाहर आके सबके फोटो निकालेंगे, लेकिन हम बाहर आके फोटो निकालेंगे अंदर का भी निकालेंगे, लेकिन पर्पज क्या है उसका, फोटो निकालकर स्क्रीन पे आने का पर्पज नहीं है, पर्पज भगवान को प्रसन्न करने का है। हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि हम जो भी करते हैं भगवान हमको देखते हैं। एक बार पांडवों को और कौरवों को द्रोणाचार्य ने क्या किया, उनको सिखाने के लिए, मतलब शिक्षा देने के लिए, उनको कहा सबको एक आम दे दिया हाथ में, उन्होंने कहा कि जाओ जहां पर कोई भी दिखता नहीं है ऐसी जगह खाके आ जाओ, कोई देख नहीं रहा है, कोई देखना नहीं चाहिए आपको, आप अकेले होने चाहिए, ऐसी जगह जाओ और आम खा के आओ। तो सब लोग गए, कोई झाड़ के पीछे गया, कोई गुफा में गया, कोई बिल्डिंग के पीछे गया, कोई घर के कोने में गया, कोई कहां गया कहां गया, कोई अंधेरे में गया और खा के आया। और धर्मराज है ना, युधिष्ठिर महाराज जो पांडवों के बड़े भाई सबसे, वो आम लेके वापस आ गए। बोले महाराज जी, सबने पूछा कहां खाया, तो इसने बताया यहां खाया, उसने बताया वहां खाया, उसने बताया वहां खाया। युधिष्ठिर महाराज को पूछा आपने क्यों नहीं खाया उसको, जहां जहां गया भगवान देख रहे थे मुझे, इसलिए मैंने खा ही नहीं पाया। ऐसे कोई जगह ही नहीं है जहां पर कोई देखने रहा हो। बोले तुम सही विद्वान, सही विद्वान तुम ही हो। उनको समझ में आया है कि सब चराचर में भगवान समाये हुए हैं, चंद्र सूर्य उनकी आंखें हैं और सब जगह वो देख रहे हैं। ऐसे कोई जगह नहीं है जो आंख बंद करके बिल्ली दूध पीती है उसको लगता है कि कोई हमको देख नहीं रहा है। हम आंख बंद कर घी भी चाट रहे हैं और दूध भी पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आंख बंद करने से, दूध पीने से ऐसा नहीं कि हम कोई दिख नहीं देख रहे हैं। हमारे आंख बंद हो गए मतलब थोड़ी सबकी आंखें बंद हो गई। जहां तक चंद्र और सूर्य है वहां सब जगह भगवान की नजर फैली हुई है और सबको भगवान देखते हैं। इसलिए हम अपने आप को भी चीटिंग कर सकते हैं लेकिन भगवान को चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो न केवल आपके कार्य को देख रहे हैं, आपके हृदय के अंदर भी देख रहे हैं कि आपके अंदर में क्या विचार है, इसको भी जानते हैं वो। हमको, हम जो लोगों को उल्लू बना सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं उल्लू बना सकते। आप कर कुछ रहे हैं, आपके मन में कुछ विचार है और आपको लग रहा है देखो देखो उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं उसको कैसा उल्लू बना लिया, कैसे मेरा स्वार्थ मैंने पूरा कर दिया, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं और एक दिन आप हमारे गलत भावना का दंड भी देंगे, हमको हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान की चक्की जो है बड़ी धीरे 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 पीसती है, लेकिन जब पीसती है तो बड़ा महीन पीसती है। जब पीसती है पीसती है पीसती है तो सोचते हैं बीच वाले का सोचते हैं हम नहीं पीसे जा रहे, देखो आगे सब दाने पीसे जा रहे हैं, हम कितने भाग्यवान हैं। हम वो चक्की है, वो चक्की को उल्लू बनाकर बीच में बैठे हुए हैं, तो एंड में क्या होता है उसको निकाला जाता है, पूरा बीज का निकाल के साइड में फैलाते हैं, फिर रख के उसको फिर पीसते हैं। तो भगवान की चक्की जो है धीरे धीरे पीसती है, बड़ा महीन पीसती है और सबको पीसती है, किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए हमको विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, अरे अभी तक लाभ नहीं मिला उसका, अभी तक तो वाहवा नहीं हुई हमारी, हाँ अभी तो शाबाशी नहीं मिली, पारितोषिक नहीं मिला, पुरस्कार नहीं मिला, मिलेगा जरूर, एक दिन जरूर मिलेगा। क्या कहते हैं उनके दरबार में देर है अंधेर नहीं है, होगा जरूर, आज नहीं तो कल। हमको मन से करना चाहिए और शांति से वेट करना चाहिए, उनकी कृपा होगी जरूर होगी। अगर आपने उनको पुकारा है, उनकी सेवा की है, तो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा वो। नेवर इट विल गो वेस्ट, नेहा विक्रम नाशुस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयात्। इतना सा भी तिनका भर आपने काम किया होगा उनकी सेवा में तो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। इस जन्म में उसका लाभ नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके लिए किया हुआ कार्य है, इस शरीर के लिए किया हुआ कार्य नहीं है। इसके लिए कार्य किया है तो शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा वो, लेकिन भगवान के लिए किया है तो इस जन्म के आगे जन्म में भी उसका लाभ मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड होगा ना, वो नष्ट नहीं होगा, वो जस्ट कैरी फॉरवर्ड। वी हैव टू हैव फेथ, भगवान का विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी श्रद्धा पर तो सब चल रहा है, उनकी श्रद्धा है इसलिए सब कुछ चल रहा है, पूरा विश्व भी चलते हुए दिखाई पड़ रहा है, हमारा जीवन भी चल रहा है। हाँ कितने आश्चर्य और चमत्कार होते रहते हैं, भगवान पे विश्वास के हाथ में होते हैं। इसलिए हम आपको विनती करते हैं कि 2 तारीख का जो कार्यक्रम है सफाई अभियान, उसको आप बाहरी दृष्टि से यशस्वी मत कीजिए, उसको हृदय से यशस्वी कीजिए। मेक इट सक्सेसफुल एट द लेवल ऑफ द हार्ट एंड सोल। जब आपका मन उनके नाम से शुद्ध हो जाएगा, जब आपका तन स्वच्छता से साफ हो जाएगा, जब आपके हृदय को शुद्ध होने की वजह से आसपास का परिसर स्वच्छ हो जाएगा, तब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि जिसका हृदय स्वच्छ है वो अपने आसपास अस्वच्छता कभी भी सहेगा नहीं, जिसका मन गंदा है उसका आसपास भी गंदा रहता है। ऐसे कहा गया है कि हमारा जो आसपास है वो हमारे मन का प्रतिबिंब है, द सराउंडिंग ऑफ आवर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कंडीशन ऑफ माइंड। इफ आवर सराउंडिंग इज डर्टी टू अंडरस्टैंड कि माइंड इज डर्टी, सो वी आर ओके विद इट। लेकिन अगर मन जिसका स्वच्छ है उसको आसपास की स्वच्छता कभी भी सहन नहीं होती, वो तुरंत साफ करेगा। जिसको स्वच्छता का मन की अनुभव है उसका, उसके पैर को धुल लगे तो तुरंत साफ करेगा, वो सहन नहीं होते उसको, क्योंकि उसका मन और आत्मा साफ है उसकी, सफाई उसके लिए नेचुरल है। बहुत बाकियों को सफाई सिखाना पड़ता है, अरे बेटा यहां पर भी देखो देखो यहाँ पर भी दाग है, यहाँ पर भी साफ करो, यहाँ पर भी करो। हमारे घर के भाई होते ना एकदम काम चोर होती है, उसको पीछे रखना पड़ता है, यहाँ पर भी करो, यहाँ पर भी करो, नीचे से झाड़ू मारो, यहाँ से पोछा घुमाओ, यहाँ पर दाग गिरा दिखाई नहीं पड़ता है क्या? तो मन बहुत मैला है इसलिए गंदगी नजर नहीं आती। जैसे सुअर होता है ना, सुअर वो गटर में ही रहता है पूरा दिन, तो उसको बोलेंगे स्नान करके आओ। स्नान क्या होता है? व्हाट इज बाथ? नथिंग लाइक बाथ। लेकिन आप अगर सफेद कुर्ता और धोती पहनकर स्नान करके निकल रहे हो और आपके पास में सुअर ने ऐसा ऐसा किया, शरीर को हिला दिया, तो कितने परेशान हो जाएंगे आप। अरे एक बूंद गिर गया, अरे गटर का एक बूंद, आपको सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है ना हमेशा, हम लोग होली खेलते हैं, होली वाले में ना बहुत होली खेलते हैं, पूरा भीग जाते हैं, अनेक प्रकार के रंग हमारे कपड़े पे रहते हैं, और फिर एक बार चार पांच छह सात घंटे होली खेलने के बाद में हम लोग अभी होली समाप्त करते हैं और घर जाके स्नान करते हैं, और फिर नए कपड़े साफ सुथरे पहनकर गैलरी में आते हैं। फिर अगर आप हमारे बॉडी पे किसने एक रंग एक बूंद रंग डाला तो उनको परेशानी होती कि नहीं, अरे होली खत्म हो गया अभी, तुम क्या इतना अच्छा कपड़ा पहन के उसके ऊपर एक बूंद कलर डाल दिया आपने, अरे दिन भर इतना बिगाया तो तकलीफ नहीं हुई आपको, लेकिन जब स्नान करके बाहर आया तो एक बूंद की परेशानी हुई, क्योंकि अभी आप बच्चे हो गए हो। वैसे कोई शराबी है समझो, वो शराब दो चार बोतल मार के अच्छी तरह से गटर में गिरा हुआ है और सपने देख रहा है कि मैं स्वर्ग में घूम रहा हूं अप्सराओं के साथ। जब नशा उतरती है रात को, सुबह उठता है ऐसे ऐसे उठ के फिर घर जाता है और स्नान करता है, और स्नान करके जब दोबारा कपड़े पहन के आता है और उस गटर को देखता है, बोले ही कितना गंदा गटर है, खुद बोलेगा आपको कितना गंदा गटर है, कोई साफ क्यों नहीं करता है उसको। मैंने कहा भाई साहब आप रात भर उसके अंदर थे, तब क्या हुआ उसका? जब मन और चेतना हृदय गंदा है तब उसको एहसास नहीं, नशे में है पूरा, पूरी नशा उसकी इतनी है कि पूरा चेतना को मन को हृदय को सब गंदा बना के रखा है, तो उसको गटर की गंदगी भी अच्छी लगती है उसको। लेकिन जब वो साफ सुथरा होके आया तो उसको सहन नहीं हो रही, ये समझना बहुत जरूरी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पहले चेतो दर्पण मार्जनम, पहले हृदय को साफ करो, भगवान का नाम लो। तुम्हारा महाराज क्या बोलते हैं, अरे नाही निर्मल मना तो काय करे साबण। हम मन अगर साफ नहीं है तो आप लाइफ बॉय लगाओ या लक्स लगाओ या फॉरेज का साबुन लेके आओ कैमे और लगा दो, क्या फायदा है उसका? हाँ दस बार साबुन लगा के दो बार तीन बार चार बार स्नान कर रहे हैं, लेकिन जब तक मन साफ नहीं है तो क्या लाभ है उसका? इसलिए कहते हैं कि नाम नाम लो, नाम का साबुन लगा दो, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय को साफ करो, तब जाकर सब हमारे आसपास का, हमारे विचार, हमारे काम, हमारे बोल बोल, हमारे बोल जो है जो मुंह से निकलते हैं सब स्वच्छ हो जाएंगे, तब जीवन धन्य हो जाएगा हमारा। अभी हमारी जबान भी गंदी है, हमारा शरीर भी गंदा है, हमारे विचार भी गंदे हैं, पाप विचार मन में आते हैं, बाहर से बहुत स्वच्छ और चमकीले लगते हैं, मन में पाप विचार भरे हुए तो अस्वच्छ आदमी, पाप मन को गंदा कर देता है, चेतना को गंदा कर देता है, तो हमको वो स्वच्छ करना चाहिए। मनुष्य जीवन ऐसे ही हृदय को और मन को स्वच्छ करने के लिए दिया गया है, क्योंकि कुत्ता बिल्ली जो है वो भगवान का नाम लेकर मन को और चित्त को साफ नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, अनपढ़ होंगे तो भी कर सकते हैं और गरीब होंगे तो भी कर सकते हैं, और बहुत गंदे दिखने वाले हो, सुंदर भी नहीं हो, तो भी हमारा मन साफ हो सकता है। मन साफ होना चाहिए, मन साफ होगा तो भगवान आपके हैं, मन गंदा है तो आपका शरीर साफ है, बहुत धनवान है, बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, दिन में चार बार कपड़े बदली करते हैं, फिर भी मन गंदा होगा तो भगवान हमें ठुकरा देंगे। इसलिए एक तो दिल से काम करना चाहिए और एक हृदय साफ करके करना चाहिए। हृदय साफ होगा तो हमारी साफ सफाई भगवान की सेवा के रूप में स्वीकार की जाएगी। द लॉर्ड विल एक्सेप्ट आवर सर्विस एज इज ओन सर्विस एंड ही विल बी प्लीज विद अस, प्रसन्न हो जाएंगे हम पर, और भगवान को प्रसन्न करेंगे जीवन धन्य हो गया हमारा। एक बार भी करेंगे तो भी जीवन धन्य हो गया, क्योंकि भगवान को जब हम एक बार प्रसन्न करते हैं तो हमने कब प्रसन्न किया हम भूल जाएंगे, लेकिन वो कभी भूलते नहीं। एक बार आपने प्रसन्न किया हमको, आप भूलने पर भी वो याद रखेंगे और उसका पुरस्कार आपको देंगे। इसलिए हमने अस्पताल होने पर भी इतना अनोखा अभियान यहां पर जारी चालू किया है, इतना पावरफुल है कि हमारे डोनर लोग कभी कभी देखने को आते हैं, हम उनको बुलाते हैं आप देखो जरा उत्सव कैसा है, जब वो देखते हैं तो वो चुपचाप नहीं बैठते हैं, तुरंत अपने कपड़े ऊपर करके साफ करने लगते हैं। हमारे डोनर लोग जो करोड़पति लोग हैं, तो दान देते हैं यहां पर आकर मरीजों के लिए, वो बैठकर मूवी देखते नहीं है कि अच्छा साफ सफाई हो रही, वाह वाह बहुत बढ़िया, ऐसा वाह वाह नहीं करते, खुद पैंट और शर्ट ऊपर करके साफ करने को हाथ बटाते हैं। क्योंकि तो देखते हैं ये डायरेक्टर डॉक्टर सब लोग चढ़कर पंखा साफ कर रहे हैं, नीचे जमीन साफ कर रहे हैं, ग्लोव पहन के सब साफ सफाई कर रहे हैं, तो उनको प्रेरणा होती है। तो साफ सफाई जो है ना वो हमेशा मन को आकर्षित करती है। जो भी जगह साफ होती है वहां पर विश्वास उत्पन्न होता है, यहां पर हम अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि तो जहां पर साफ सफाई होती है वहां पर यह भी मालूम होता है कि वहां पर साफ सफाई जिनकी मन की हो गई है ऐसे लोग यहां पर रहते हैं। साफ जगह का मतलब क्या है बताओ? साफ जगह का मतलब यह है कि जिनका मन साफ है ऐसे लोग यहां पर रह रहे हैं, इसलिए जगह भी बहुत साफ है। अगर आप म्यूनिसिपालिटी के हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या देखोगे? आपको पता है जिनके मन गंदे हैं ऐसे लोग यहां रहते हैं, सब जगह थूक के रखा है, पान का इधर का उधर का सब कागज गिरा हुआ है, सब कचरा सब फैला हुआ है, उधर ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं लोगों का, सब कुछ कर रहे हैं। क्या लगता है हमको, यहां पर जिनका मन मैला है वैसे लोग यहां पर घूमते रहते हैं? जहां साफ सफाई होती है वो क्या आपको बोलता है, वो जगह क्या बोलती है? यहां पर जिनका मन साफ है वो लोग रहते हैं, और जहां पर साफ सफाई होती है वहां बहुत ही पास भगवान होते हैं। लोगों को वो विश्वास दिलाता है कि हम यहां पर बीमार नहीं होंगे, बीमारी को लेके आए हैं, यहां की बीमारी लेके नहीं जाएंगे, यहां पर आके साफ होके ठीक होके जाएंगे। ये विश्वास उत्पन्न होता है, साफ सफाई बहुत शक्ति होती है। साफ सफाई होते ही तुरंत मन में सत्वगुण उत्पन्न होता है और मन में अच्छे विचार आने लगते हैं। आप देखिए किसी भी गंदी जगह आप जाएंगे तो आपका मन भी ऐसा ही हो जाएगा, अगर आप साफ जगह में जाएंगे तो प्रसन्न हो जाएगा आपका मन, एकदम प्रसन्न। किसी भी गार्डन में जाइए, अगर गार्डन में जो प्लास्टिक का टुकड़ा ग्लास या कपड़ा कागज सब गिरा हुआ है तो क्या प्रसन्न लगेगा ना आपको? लेकिन जो गार्डन के अंदर सब कुछ साफ बना के रखा है, काट फूट के बढ़िया से रखा है, कोई कचरा नहीं है, कोई ग्लास नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, कोई कागज नहीं है, तो आपको लगेगा कि यहाँ बैठे रहो, यहाँ बैठे ही रहो, क्योंकि वहां पर सत्वगुण की वृद्धि होती है, सत्वगुण की वृद्धि होती है और सत्वगुण के अंदर भगवान की प्राप्ति होती है। सत्वगुण के अंदर रोग नष्ट हो जाते हैं, सत्वगुण के अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छा समाज उत्पन्न होता है। हमारा अस्पताल इसलिए फेमस है आप लोगों की वजह से कि आप लोग साफ रखते हो, गंदगी को उत्पन्न होने देते नहीं हो, जो होती है उसको साफ कर देते हो, इसलिए बॉम्बे में हमारा हॉस्पिटल फेमस है। विश्वास दिलाने वाली बात है, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए आपको साफ सफाई करनी। तो गुंडीचा मर्दिन मार्जन उत्सव की जय हो, जगन्नाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हरे कृष्णा।